الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المبارك کے یہ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، اور ایک ہفتہ ہونے والا ہے رمضان کو شروع ہوئے ہوئے. رمضان المبارک کے دنوں میں اور غیر رمضان میں فرق ہونا چاہیے. رمضان میں ہماری دعائیں، ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور نوافل میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ جو زندگی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر ہم کچھ اگائیں گے تو آگے وہ کاٹیں گے. جو بو گے وہ کاٹو گے. وہاں کوئی سرپرائزز نہیں مل جائیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور وہاں پہ اعمال نامہ کھولے تو وہ نیکیوں سے بھرا ہو، ایسے نہیں ہونا. لہٰذا کبھی بھی مقصد نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. ہم شروع میں تو بہت ذوق اور شوق سے اور بڑے جذبے کے ساتھ رمضان کا آغاز کرتے ہیں، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تھوڑی سستی آنے لگتی ہے، وہی پرانی والی روٹین شروع ہو جاتی ہے. تو رمضان کو ہم نے پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے، اور اس کے نتیجے میں بخشش حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے بے مقصد کاموں کو چھوڑنا ہے جن کے بغیر گزارا چل سکتا ہے. صرف ہم ان کو ٹائم پاس کے لیے کرتے ہیں یا ایڈکشن ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، ان باتوں کو چھوڑ دینا. وقت ضائع نہیں کریں گے تبھی وقت کسی کارآمد چیز میں لگے گا، اور اگر وقت ضائع ہو رہا ہے تو کبھی بھی آپ مفید کام نہیں کر سکتے. جانتے ہیں ہم میچور کب ہوتے ہیں؟ میچورٹی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ میچور تب ہوتے ہیں جب آپ کا علم وسیع ہو جاتا ہے، جب زبان زیادہ خاموش رہتی ہے، جب دوست محدود ہو جاتے ہیں، آرام کم اور محنت زیادہ ہو جاتی ہے، جب آپ بحثوں میں نہیں پڑتے اور معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میچیورٹی ایسے ہی نہیں آ جاتی. انسان یعنی سمجھدار کب ہوتا ہے؟ جب اس میں یہ چیزیں آنے لگتی ہیں. لہذا ان دنوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے گزارنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ جلدی ہی گزر جائیں گے. میں نے اس میں کچھ نہ کچھ سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، میں نے کچھ کمائی کرنی ہے اپنے لیے ان دنوں کے اندر. ہم بات کر رہے ہیں آج کل اپنے تزکیے کی. تزکیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر سے گندگی نکالنی ہے اور اس کی جگہ پہ اچھی چیزیں سیٹ کرنی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کسی بھی جگہ کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح دلوں کی صفائی کے یہ دن ہیں. اور اس میں بھی دل کو پہلے گندگی سے پاک کرنا، پھر اس کے اندر نیکیاں بھرنی ہیں. گندگی گناہ ہے، گناہوں کو نکالنا، برے کاموں کو زندگی سے نکالنا، اپنے دل سے نکالنا، اور اس کے بعد اس کے اندر نیکیوں کو بھرنا، نیکی کے کاموں کو اختیار کرنا، اپنی روٹین میں لانا. تو یہی تزکیے کا عمل ہے. ہم لوگ گھروں کو جب سجاتے ہیں تو گندے گھر کو کوئی نہیں سجاتا، پہلے اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر سجاوٹ یا ڈیکوریشن رکھی جاتی ہے. اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ قربتوں کا مہینہ ہے. اس کے لیے ہم دعائیں بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے، اور اس کے لیے دوا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے. آپ کو پتہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت پیارا وقت آج کل ہمیں میسر ہے، اور وہ ہے سحری کا وقت. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ٹائم کو کہا گیا کہ یہ جو آخری ایک تہائی رات رہ جاتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि कोई है मेरा बंदा जिसको बख्शिश चाहिए तो मैं उसको बख्श दूँ, कोई है मेरा बंदा कि जिसको कोई हाजत हो तो मैं उसकी हाजत पूरी कर दूँ। तो अल्लाह ताला खुद पुकारता है, हम सहरी बनाने में मसरूफ होते हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, वो टाइम होता है दुआएं करने का। तो आगे पीछे चाहे हम उस वक्त नहीं भी उठे हों, लेकिन आजकल तो लाजमी उठती हैं, तो सहरी के वक्त को गनीमत जानी, समझ ले कि ये इस वक्त मेरी दुआ कबूल हो सकती है। तो इसमें आपने दुआओं को शामिल करना है और दिन भर इंशाल्लाह जिक्र के साथ अपनी जुबान को तर करना। और रोज़ा बड़ा अच्छा रिमाइंडर है जिक्र का, क्योंकि जाहिर है जब रोज़ा लगेगा तो फिर अल्लाह याद आएगा। तो इसलिए रोज़े को भी आप जिक्र का मौका समझिए अपना, और कभी जिक्र भूलेगा नहीं फिर इंशाल्लाह। आज हम जिस बीमारी के ऊपर बात करेंगे वो भी बीमारी ऐसी है कि जिससे बहुत सारी बीमारियां फूटती हैं, इससे ये यानी गुनाहों की जड़ है, ये बाकी बीमारियों की जड़ है। बाकी बीमारियां अगर आप ठीक करना चाहती हैं तो इस बीमारी को सही कर लें, बाकी तमाम बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और ये बीमारी क्या है? हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। देखिए इस दुनिया के अंदर हमने खाना भी है, पीना भी है, रहना सहना भी है, घर भी बनाने हैं, गाड़ी भी लेनी है, नौकरियां भी करनी है, बिजनेस भी करने हैं, सब करने हैं। लेकिन जब ये चीजें शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं तो फिर ये दूसरी बुराइयों की जड़ बन जाती है। यानी जब इंसान के दिल में इसकी मोहब्बत रासिख हो जाए तो फिर उसकी नाव डूबने का वक्त है। ये ऐसे ही है जैसे कश्ती जो है, तो नाव जो है वो चलती है समंदर के अंदर, पानी में चलती है ना, तो पानी में ही उसको चलना है। मगर अगर ये पानी बाहर रहे तब तो ठीक है, अगर ये पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरह दुनिया है, इस दुनिया के अंदर ही हमने रहना, इसी में हमारे सारे काम यहीं पे हैं, इसको हम छोड़ के कहीं और जंगलों में नहीं निकल सकते। मगर अगर इसकी मोहब्बत दिलों में आ गई तो फिर डूब जाएगी जिंदगी, क्योंकि जब ये मोहब्बत दिल में आ जाती है कि दुनिया दुनिया चाहिए मुझे, तो फिर वहीं से लालच आता है और मिल जाए। और जब लालच आता है और इंसान और के पीछे पड़ जाता है तो वहीं पे बुखल आता है कि अब उसका दिल नहीं करता मैं किसी और को दूं, ये मैंने इतनी मेहनत से कमाई है मैं क्यों दूं। और इस वक्त ही फिर कीने भी आते हैं, क्योंकि किसी ने हमारा हक नहीं दिया या किसी ने हथिया लिया हमारा माल, या आप देखें कितने ही झगड़े और कितने ही कता ताल्लुक इस वजह से हो जाते हैं कि माल के मामले में कोई मसले आ जाते हैं और लोग एक दूसरे के साथ कट ऑफ कर देते हैं, इवन रिश्तेदारों के साथ। कितने ही मुकदमे अदालतों में किस लिए चल रहे होते हैं? जायदादों के मसलों पे, उसने हमारा हक मार लिया, उसने ये कर लिया, हमें कुछ मिला ही नहीं। तो ये दिलों में कीने इसी से फूटते हैं। इसी तरह हसद के जज्बात, जब इंसान देखता है कि हो कि और मेरे से आगे निकल गया तो फिर उसके अंदर हसद भी आता है, फिर तकब्बुर भी आता है, फिर फखर भी आता है, फिर रियाकारी भी आती है। तो सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं जब ये दुनिया हमें बहुत प्यारी हो जाती है। अब हम सब ही कहेंगे हमें तो कोई दुनिया की ऐसी मोहब्बत है नहीं, हमारे दिल में तो अल्लाह की मोहब्बत है, दुनिया की तो मोहब्बत कोई नहीं। चलिए चेक करते हैं, इसको डायग्नोज करते हैं, सोचें मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, मेरा शौक क्या है, मेरा रश्क क्या है, मेरा गम क्या है, मुझे खुशी किस चीज़ से मिलती है, मेरा फोकस क्या है, मेरी मेहनत किधर लग रही है, मैं दूसरों से मुकाबले किस चीज़ में करती हूँ। सब अपने दिलों को इसमें चेक करें। मैं अपसेट किन चीजों पे हो जाती हूँ, मुझे पसंद क्या चीजें आती हैं, क्या मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ जब मैं जो जॉब में तरक्की ना मिले, क्या मैं खुशी से आपे से बाहर हो जाती हूँ जब मुझे कहीं एडमिशन मिल जाता है। तो ये ठीक है, ये जिंदगी के साथ हैं, ये जिंदगी के काम हैं, इनमें जाहिर है कहीं खुशी भी होगी, कहीं इंसान को अफसोस भी होता है, लेकिन क्या यही दिमाग पे सवार है? जबकि मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरत में मेरा ठिकाना क्या है, मैं उस पर कभी भी परेशान नहीं होती, कभी ऐसी फिक्रमंद नहीं हो जाती कि वो फिक्र ही मेरे दिमाग पे छा जाए। तो क्या चीज खुश करती है और क्या चीज दुखी करती है, कौन सी खबर है, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीजें हैं। अल्लाह हू अकबर। तो अपनी डेली लाइफ को चेक करना है हमने, सिर्फ एक दिन की बात नहीं, ये सिर्फ एक लेक्चर की बात नहीं है, खुद अपने आप पे गौर करना है। अब आपको किसी दर्स में पूछ लिया जाए आपको किस चीज़ से खुशी होती, तो आप कहेंगे हाँ मुझे कुरान में तदब्बुर करने से बड़ी खुशी होती है, मुझे नमाज पढ़ने में बड़ी खुशी होती है। नहीं, ये डेली लाइफ की बात, अपने आप से सच बोलना। और मैंने आपको जैसे बताया ये चीज़ें कोई हराम नहीं है कि किसी को जॉब मिल गई तो हराम हो गया, अगर नया घर मिल गया तो हराम हो गया, अच्छा किसी को रिश्ता मिल गया तो ये हराम हो गया, नहीं। मगर मेरे जज्बात क्या इन्हीं चीजों के साथ रिलेटेड है? क्या मैंने अपना जिंदगी का गोल इन्हीं चीजों को बनाया था? क्या मेरी आखरत के लिए भी इतनी तड़प है जितनी दुनिया की जरूरियात के लिए है? मेरा गोल क्या है लाइफ का? मेरी जिंदगी घूम किधर रही है, किसके गिर्द घूम रही है? अगर यही चीजें मेरे अंदर हैं तो दिल बीमार है, इस दिल के अंदर तो अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक, उसको राजी करने की तड़प और नेकियां करके खुश होने का जज्बा होना चाहिए था, मगर ये यहां से अटैच्ड है, अटैच हो गया, तो ये अटैचमेंट सही नहीं है। बाकी काम हमने सबने करने हैं, यही जितनी अटैचमेंट कम होगी उतना मेरा दिल सलीम है, सलामत दिल है, और जितनी ये अटैचमेंट ज्यादा होगी उतना मेरा दिल बीमार है। जरा सोचिए, दूसरा एक और भी डायग्नोज का तरीका सोचिए, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहले क्या बात आती है, क्या चीज आती है? फोन, मैसेजेस, बच्चे, बिजनेस, जॉब, आज क्या खाना है, क्या क्या चीज़ है मेरे जहन में? हम वैसे कहते हैं मैं अल्लाह से शदीद मोहब्बत है, लेकिन क्या बात है कि उठते ही अल्लाह याद नहीं आता, और तो और छोड़े नमाज में भी अल्लाह याद नहीं आता, नमाज में भी यही चीजें याद आती। अल्लाह अकबर, मेरे मुकाबले किन चीजों में होते हैं? कपड़ों में, जेवरों में, घरों में, गाड़ियों में, जायदादों में, कितना किसने बना लिया इसमें, किसका कितना बड़ा घर है इसमें, किस चीज में मुकाबले हैं? अगर तो वो चीजें मुझे खुश कर रही हैं जो अल्लाह ताला से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब दुनिया ही बसी हुई है, जो आखरत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब दुनिया ही है ना दिल में। तो अगर आप इसका इलाज चाहते हैं तो हर चीज में, हर बात में अल्लाह ताला को ले आए। आपने मसलन कोई अच्छा घर देखा तो आपने कहा ठीक है वो अच्छा घर आपको पसंद आया, आप उस घर को लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही दिल में ये आना चाहिए अल्लाह जन्नत में इससे बेहतर देना, जन्नत के घर तो इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं, अल्लाह मुझे जन्नत का घर चाहिए। दुनिया की कोई भी कामयाबी मिली तो अल्लाह असल कामयाबी तो आखरत की कामयाबी है। शुक्र है तूने मुझे यहाँ पे भी ये दी। ये नहीं कि नाशुक्री करें, हाँ ये क्या चीज है, पहले अल्लाह से दुआएं मांगते रहते हैं हम, अल्लाह फलां को पास कर देना, अल्लाह ताला मेरा ये जो इंटरव्यू है वो सही हो जाए, आए मुझे ये चीज मिल जाए। जब वो मिल जाती तो कहते हैं हाँ ये क्या चीज है, हाँ असल तो आखरत की, ये तो कुछ भी, ये भी नाशुक्री है। पहले आप इसके लिए इतना तड़प रहे थे और इतनी दुआएं कर रहे थे, जब चीज मिली तो आप उसको ऐसे ठोकर मार रहे हैं जैसे कोई चीज ही नहीं है। तो नहीं, जब दुनिया में भी कोई कामयाबी हासिल हो तो उसको भी अल्लाह का शुक्र अदा करके और आखरत के साथ इसको भी रिलेट करें। ये घर मिला है तो इससे अच्छा घर आखरत का घर है, कहीं मैं उसको ना भूल जाऊं। ये नौकरी मिली है लेकिन इससे बड़ी कामयाबी आखरत की कामयाबी है। इस जगह मैं इम्तिहान में पास हो गई हूँ लेकिन मेरा एक इम्तिहान आखरत का भी, अल्लाह उसमें पास कर देना। अल्लाह तूने यहाँ पे आसानी की है, अल्लाह वहां पे आसानी कर देना। अल्लाह यहाँ पे तूने मुझे इस मुसीबत से निकाला है, अल्लाह आखरत की मुसीबत से निकालना मुझे। समझ आई? तो वो चीज कभी जहन से जानी नहीं चाहिए। वो मैंने आपको पहले भी ये हदीस बताई थी कि जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखरत का नुकसान किया, और जिसने आखरत से मोहब्बत की उसकी दुनिया का कोई ना कोई नुकसान तो जरूर होगा। तो फरमाया बाकी रहने वाली को फानी पे तरजीह ना दो, तरजीह दो बाकी रहने वाली को फानी पर तरजीह दो, यानी वो बाकी रहने वाली है और उसको इस फानी यानी इस दुनिया के ऊपर तरजीह दो, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए जब आपके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है ना, या मोहब्बत इस जड़ पकड़ जाती, तो फिर आखिरत का नुकसान ही होगा ना, फिर भाग दौड़ तो यहीं के लिए होगी। तो इसका एक और इलाज ये है कि इंसान ये सोचे कि मैंने ये सब कुछ छोड़ के चले जाना है। इंसान के लिए मौत जो है वो उसके कहते हैं ना कि जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है, जूते के तस्मे से भी ज्यादा, इतनी करीब है जो उसको अगर इंसान भूल जाए तो अगला पल पता नहीं है उसको कि इसी जमीन के ऊपर होना है उसने या जमीन के नीचे होना है। तो अगर वो ये भूला रहता है और यही कि गमों के अंदर उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो इसका मतलब है दिल यहाँ खुबा हुआ है, दिल यहीं लगा हुआ है, इसको आखरत याद नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि इंसान मौत का अपने आप को रिमाइंडर देता रहे, इससे भागे नहीं। और दुनिया, अगेन मैं आप लोगों को कह दूं, दुनिया का मतलब ये नहीं है आप खाना पीना छोड़ दें, आप अपने घर का काम छोड़ दें, अब से तो जी मैं दुनिया से फारिग होके बैठ गई हूँ, मैंने किसी का ना कुछ पकाना है ना खाना है ना घर को साफ करना है, गंदे रहना है, हम तो दुनिया से बहुत दूर हैं। नहीं, दुनिया से मुराद ये हसल बसल है जो इंसान को अपने अंदर मशगूल कर लेती है, और ये यहीं की फिकरात हैं जो इंसान के दिल को हर वक्त इन्वॉल्व रखती हैं, और यहीं की मसरूफियात हैं जो इंसान को आखरत के लिए कुछ करने ही नहीं देती। तो अब जब इंसान अपनी मौत को याद रखेगा ना, तो मौत को याद करने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि इंसान का यहां से फिर दिल उतना नहीं लगेगा। मा इंदकुम यंफिदु वमा इंदल्लाह बाक, अल्लाह ताला ने फरमाया जो तुम्हारे पास है ना वो खत्म हो जाने वाला है और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। तो ये जो बाकी रहने वाला है उसके लिए मेहनत कितनी है, और जो खत्म हो जाने वाला है जो छोड़ जाना है उसके लिए कितनी गम है और कितनी मेहनतें हैं और कितना रातों रत जगे हैं, रातों को हम जागते हैं उसके लिए मेहनत में, कभी अल्लाह के लिए भी जागते हैं, कभी उसके जिक्र के लिए जागते हैं, कभी दुआओं के लिए जागते हैं। हालांकि अपनी ही हमारी जरूरियात होती हैं लेकिन उनके ऊपर हमारी इतनी तवज्जो नहीं होती। तो इसलिए मौत को याद करें, अपने जाने को, अपनी आखरत को, और मौत में सिर्फ ये नहीं मरने का वक्त ही नहीं, ये कि ये सब कुछ छोड़ जाना है, इसको याद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत को कसरत से याद करो। एक दफा कुछ लोगों के पास से गुजरे तो वो हंस रहे थे, फरमाया अपनी मजलिसों में मौत की याद को शामिल करो। यानी ये नहीं है कि कभी हंस ही नहीं सकते, मगर उनको याद दहानी करवाई कि अपनी मजलिसों को सिर्फ गपशप और फन और हंसी मजाक की जगह ना बनाओ, बल्कि इसमें जाने को। उम्मीद है कि आप लोग सदके का एहतमाम कर रहे होंगे। देखिए हदीस में आता है, जो किसी बेलिबास मुसलमान को कपड़ा पहनाए, अल्लाह उसके उसको जन्नत के सब्ज हुल्लों से हुल्ला पहनाएगा, यानी जन्नत के लिबासों में से। और जो किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए, अल्लाह उसको जन्नत के फलों में से खिलाएगा। तो ज़ाहिर है जन्नत के फल बाहर लाके तो नहीं दिए जाएंगे, इसका मतलब वो जन्नत में दाखिल होगा ना। और जो किसी मुसलमान को पानी पिलाए, अल्लाह उसको जन्नत की मोहर बंद शराब में से पिलाएगा। तो जब खाना पकाएं कुछ ज्यादा पका लें, किसी भूखे को दे दें, कपड़े खरीदें एक जोड़ा ज्यादा ले लें, किसी मिस्कीन को दे दें। अगर गर्मियां हैं तो पानी की बोतल साथ रखें, कि सड़क पे कोई कोई रेड़ी वाला है या कोई मजदूर काम कर रहा है या कोई है, उसको एक बोतल दे दें। तो सदका जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े पैसों से ही सदका करें तो सदका होता है, सदका किसी सूरत में भी हो सकता है। किसी को दो निवाले खाने के दे दिए, किसी को एक खजूर भी पकड़ा दी, किसी को पानी दे दिया। पानी तो कोई कीमती बहुत पैसों की चीज़ नहीं है कि जो पानी पिलाने में भी कोई पैसा लग जाएगा। ये काम तो सभी कर सकते हैं ना। आज की जो दुआ है ना, वो बहुत अहम दुआ है। इसलिए अहम दुआ है कि इसके अंदर ना हमारे सारे ही काम, सारे काम हो जाने हैं इसमें। इसलिए मुझे ये दुआ बहुत पसंद है। एक तो इसमें हो सकता है ये इसमें आज़म हो, इसमें आज़म नहीं भी है अगर तो तब भी अल्लाह ताला के बड़े नामों में से है, जिसकी बड़ी फजीलतें उलमा ने बयान की है। या हय्यू या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस फ अस्लिह ली शअनी कुल्लहू वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आईन। ए हय और कय्यूम ज़ात, ए वो ज़ात जो जिंदा है और कायम रखने वाली है, कायम है खुद भी और कायम रखती है, कायनात को पूरी को चला रही है। अल्लाह असलिह, पहले हाँ पहले अल्लाह ताला के नाम लेके ये भी रहमतिका अस्तगीस, यानी अस्तगीस का मतलब होता है फरियाद करना। अल्लाह यानी मैं डेस्परेट हूं तेरी रहमत की, डेस्परेट यानी आप, मैं फरियाद करती हूँ तेरी रहमत की। असलिह ली शानी कुल्लहू यानी अल्लाह मेरे सारे ही कामों को फिक्स कर दे, मेरे सारे ही मसले हल कर दे, मेरे सारे ही कामों की इसलाह कर दे। आपका कोई भी मसला है ना, कोई भी परेशानी है, कोई बच्चों की है, हस्बैंड की है, जॉब की है, बीमारी है, कोई सेहत के मसाइल हैं, कोई या अमल नहीं हो रहा, कोशिश कर रही हैं, या बरकत नहीं है वक्त में, या जैसे चाहती हैं उस तरह जिंदगी नहीं हो पा रही, आप परेशान हैं कैसे मैं इन मसाइल को हल करूं, मुझे कोई हल नजर नहीं आता, तो अल्लाह ताला मेंड कर देगा हर चीज को। सारे ही आपने अपने काम उसके सपुर्द कर दिए, अल्लाह मेरे सारे ही कामों को संभाल लेना, मेरी मेरी हर जरूरत को पूरी कर देना। कितनी प्यारी दुआ है ना, यानी आपको एक एक चीज का नाम भी नहीं लेने की जरूरत है। सारी बातें आपने अल्लाह ताला को कह दी कि अल्लाह सारी चीजों की तू टेक केयर कर लेना, तो तेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह तकिलनी इला नफसी तरफत आईन, अल्लाह एक दिन एक घंटा एक मिनट तो क्या, अल्लाह एक पलक झपकने की भी टाइम के लिए मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। एक पलक झपकने यानी एक सेकेंड, अ ब्लिंक ऑफ एन आई तक के लिए भी अगर मैंने नफ्स के हवाले मुझे कर दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँ। नफ्स तो इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। तो यानी मेरे लिए खैर की सिचुएशन ही करना, तो ये बहुत ही प्यारी दुआ है। और याद रखें, दुआ करने वाला कभी महरूम नहीं होता, कभी बदबख्त नहीं रहता। दुआ तो मोमिन का हथियार है, लिहाजा दुआओं से अपनी जिंदगी को सजा लें, ये सजावट है, जिक्र से अपनी जिंदगी को मुजयन कर लें। अल्लाह अकबर। तो जो कोई मसाइल, कोई ऐसी मुश्किलात भी होंगी ना, तो अल्लाह ताला हल फरमा देगा। जब असलह ली शानी कुल्लहू कह दिया, तो किसके हवाले कर रहे हैं आप, किसको कह रहे हैं, जो पूरी कायनात चला के भी थकता नहीं है। वला यऊदुहू हिफ्ज़ुहुमा, वो तो उसको थकावट है ही नहीं, उसको नहीं थकाती इनकी सबकी हिफाजत भी। तो मेरे काम तो बहुत ही छोटे हैं, अल्लाह अल्लाह इनको भी कर दे। आज का जो जिक्र है वो भी बहुत प्यारा जिक्र है, इसलिए कि इस जिक्र के बारे में आता है कि ये बेस्ट दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ जो है वो योम अरफा की दुआ है। और जो कोई, जो कुछ भी मैंने और मुझसे पहले नबियों ने कहा, इसमें सबसे अफजल ये है। यानी ये पिछले नबियों का भी कलमा था, उनका भी जिक्र था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। और जो 100 टाइम इसको कह देना सुबह को, तो पूरा दिन वो शैतान से महफूज रहता है। और वो पता है ना, शैतान के सिर्फ ये नहीं, वसवास वगैरह नहीं होते, ये जिन्नात का जिनको मसला हो जाता है, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब जिन उनको सताते हैं, या कोई ऐसी घर में ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये कलिमा 100 दफ़ा पढ़ लेंगे, शैतान से महफूज हो जाएंगे। फिर इसी तरह घरों में झगड़े लड़ाइयाँ, ये भी जिन्नात शयातीन जो हैं, ये शयातीन इंसानों को इस तरह इस किस्म की चीज़ों में उलझाते हैं, झगड़े करवाते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मतलब तो सबको ही पता होगा। तो ये बहुत प्यारा जिक्र है, इस जिक्र को सामने रखिए, ये जिक्र करते रहिए, कोशिश कीजिए। अगर सुबह में 100 दफ़ा नहीं भी हो पाता, दिन में बार बार ये जिक्र करने से इंशाल्लाह 100 का आदत पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसके आगे दुआएं करें और उसके जिक्र से अपनी जुबान को तर रखें। अल्लाह ताला हमें इस महीने में बेशुमार नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और इखलास नियत अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।